इकाई 4 में पर्यावरण संकट के कारण की व्याख्या करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जो पर्यावरणीय संकट है, यह एक गंभीर घटना है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं अथवा मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। इसकी गंभीरता इतनी अधिक है कि जीवधारियों और मनुष्यों की सहनशीलता से परे है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख भी रहे होंगे कि इस समय हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो कि वैश्विक तौर पे एक महामारी का रूप ले चुकी है और अत्यंत कष्टदायी स्थिति में हम सभी हैं। तो अब हम बात करते हैं ये पर्यावरण की जो सांकटिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे भूकंप है, भूचाल है, मैंने आपको बताया। तो इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रही हैं। तो ये जो विघटन हो रहा है, ये मानव द्वारा ही हो रहा है, और मानव द्वारा होने वाला यह विघटन तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो कर रहा है। इस विघटन के अंतर्गत हम देखते हैं कि मनुष्य का रहना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, और पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो भंग हो रहा है, तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो ये पर्यावरणीय संकट है, वह संकट कई तरीके से विभाजित किया गया है। जैसे पहले मैंने आपको चित्र में दिया है कि सबसे पहला संकट आता है प्राकृतिक संकट। ये प्राकृतिक संकट जब स्थलीय और वायुमंडलीय घटना की अधिक गंभीरता हो जाती है, तब ये संकट एक प्रकोप का रूप धारण कर लेता है। और इस प्रकार प्राकृतिक संकट और प्रकोप ये दो तरह के हो जाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला आपका आता है स्थलीय संकट। स्थलीय संकट मतलब सामान्य रूप से पृथ्वी के धरातल में होने वाली प्राकृतिक गंभीर घटनाओं को स्थलीय संकट कहते हैं। इनसे पृथ्वी आंतरिक भाग में बल उत्पन्न करने के कारण अपने अंदर घटना उत्पन्न करती है, अर्थात उसके अंदर घटना होती है। तो इस प्रकार की घटनाओं का कारण पृथ्वी के अंदर ही छुपा रहता है, दिखलाई नहीं देता, केवल उसका प्रभाव दिखलाई देता है और हम उसको अनुभव करते हैं। दूसरी बात आपकी आती है कि ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट कुछ होते हैं जिसका कारण आंतरिक होता है। वह दिखाई तो देता है विस्फोट, परंतु इसका कारण आंतरिक होता है। भूकंप का प्रभाव हम अनुभव करते हैं और दिखाई देता है, परंतु कारण का पता नहीं होता, वह पृथ्वी के अंदर ही अंदर चिमटा रहता है। और जो भूस्खलन होता है वो दिखाई देता है, परंतु कारण का उसके भी बोध नहीं होता। तो ये जो सारी गंभीर घटनाएं हैं, इन घटनाओं का कारण पृथ्वी का आंतरिक ताप पारिस्थितिक होता है। आंतरिक जो ताप में किसी परिस्थिति के कारण हो जाता है वो होता है। पृथ्वी के परतों के भाग में असंतुलन के कारण यह कार्य होता है। भूकंप हिमालय क्षेत्र, तराई क्षेत्र तथा बिहार इत्यादि स्थान में अधिक आते हैं। तीनों ही प्रकार के ये संकट और प्रकोप में आंतरिक संबंध होता है। ये गंभीर घटनाएं ही एक दूसरे के लिए कारण होती हैं। अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आता है, भूस्खलन भी होता है। पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप के कारण भूस्खलन हो जाया करता है। ये संकट और प्रकोप जो है वो मानवीय निर्माण कार्य की अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचती है। जैसे भवन बने हैं, सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, कारखाने, बांध इत्यादि को बड़ा नुकसान होता है। और सबसे बड़ा प्रकोप मानव जीवन और जीवधारियों पर इसका पड़ता है। पर्यावरण की जो गुणवत्ता होती है वो समाप्त होती जाती है, और मानवीय ढांचे, नगर, शहर, कस्बे, गांव और परियोजना, मानव निवासी इत्यादि नष्ट होते जाते हैं। तो इस तरह की गंभीर घटनाओं के कारण हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको कि वायुमंडलीय संकट और प्रकोप। जो वायुमंडलीय संकट है, इनका कारण मौसम तथा जलवायु की जो बाह्य गंभीर परिस्थितियां होती हैं, उस कारण ये होता है। ये वायुमंडलीय प्रक्रियाओं या बल के कारण संकट पैदा होता है, और इससे ये वायुमंडल में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए वायुमंडलीय बाह्य संकट तथा प्रकोप इन्हें कहा जाता है। इससे भी घटना होने के कारण दिखाई तो नहीं देती, परंतु निरीक्षण शाला में जब हम आलेख तैयार करते हैं तो उसके आधार पर ही भविष्यवाणी तय की जाती है। ये घटनाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है असामान्य घटनाएं, जैसे चक्रवात का आना, बिजली का चमकना, ओलों की वर्षा तथा आग का लगना इत्यादि। दूसरे नंबर पे आपका आता है संचित वायुमंडलीय संकट, जैसे बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, शीतलहर, ग्रीष्म लहर इत्यादि। तीसरे नंबर पे आपका आता है असामान्य घटनाएं। भारत में चक्रवातों का उदाहरण अक्सर बंगाल की खाड़ी में हम देखते हैं और इसी से यह संकट उत्पन्न होता है। इन चक्रवातों के कारण समुद्र का पूर्वी तटीय भाग प्रभावित होता है। इन चक्रवातों का कुप्रभाव पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक गंभीर चक्रवात मई 1990 में आया था, जो नवंबर 1977 के चक्रवात से 25 गुना तेजी से आया था, जिसके कारण मानव जीवन, अन्य वन औषधियां, कृषि, वनस्पति, फसलों, मानवीय निर्माण मकान जो है, रेल, सड़क, बिजली, संचार साधन आदि सभी नष्ट हो गए थे। अब आइए अगले नंबर पे हम आते हैं संचित वायुमंडलीय संकट तथा प्रकोप, जैसे बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ये सब उदाहरण संचयी वायुमंडलीय संकट के प्रकोप हैं। बाढ़ से मतलब है नदियों में पानी इतना अधिक हो जाए कि वह उसके बेसिन से बाहर मील की दूरी पर फैल जाए और बड़ा नुकसान हो जाए, उससे कई दिनों तक फैला ही रहे। इसका कारण अधिक वर्षा का हो जाना, बांध का टूटना और नदियों में बाढ़ आने से जान माल की बड़ी क्षति होती है, नुकसान होता है। बांध के टूटने से भी नदियों में बाढ़ आ जाती है और फसल इत्यादि भी नष्ट हो जाती है। इससे अधिक कटाव के कारण वनों के जो कटाव होते हैं, वनों के कटाव के कारण बाढ़ आ जाती है और ये सारी बातें जो है अक्सर नुकसानदेह होती हैं। हम देखते हैं कि ये जो पर्यावरणीय संकट है, ये पर्यावरणीय संकट कई तरीके से हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपका है कि मानवीय संकट हो जाता है आपका। सबसे पहले आपका आता है प्राकृतिक संकट, और प्राकृतिक संकट के अंतर्गत स्थलीय संकट और प्रकोप आया है। स्थलीय संकट के बाद आया वायुमंडलीय संकट तथा प्रकोप, उसमें आपका पहला है असामान्य घटनाएं, दूसरा है संचित वायुमंडलीय संकट, तीसरा है उसमें पहला, हाँ, फिर उसके बाद आपका आता है पर्यावरण प्रबंध योजना, इसको मैं आपको अगली क्लिप में बताऊंगी।